नमस्कार भारत 23 अक्टूबर दिन सोमवार स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा इराक में इस्लामिक स्टेट से खत्म हो रही है लड़ाई, ईरान के समर्थन वाले लड़ाके वापस जाएं।
Iranian militias that are in Iraq now that the fight against Daesh and ISIS is coming to a close, those militias need to go home.
गुजरात में तेज होती सियासी हलचल के बीच के अल्पेश ठाकुर के आने से ओबीसी वोट कांग्रेस की झोली में जाएंगे।
अल्पेश की वजह से जो ओबीसी मतदार है वो 50% में से 30% भी आए, उससे कांग्रेस को सीधा फायदा तो होगा ही।
मुंबई वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 विकेट से हराया और के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम किया। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अब जब इराक में युद्ध समाप्ति की ओर है तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे ईरान समर्थित नागरिक फौजों को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन लड़ाकों को या तो इराकी फौज में शामिल हो जाना चाहिए या घर लौट जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन लड़ाकों के ईरानी समर्थकों को भी इराक छोड़ देना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ईरानी और इराकी शियाओं ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज बगदाद और दमिश्क पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा होता। जापान में हुए मध्यावधि चुनाव में प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारी जीत की ओर हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक अबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने की संभावना है। शिंजो अबे ने कहा है कि सरकार बनने के बाद उनका सबसे पहला काम उत्तर कोरिया के साथ कड़ाई से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे उत्तर कोरिया का एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव अभियान में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने संविधान को बदलने का वादा भी किया था। संविधान की धारा 9 में देश को युद्ध से पूरी तरह दूर रखने की घोषणा की गई है। मैं मानता हूं कि ये चुनाव उत्तर कोरियाई खतरे को लेकर था। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर कोरियाई खतरा अब तक का सबसे बड़ा खतरा है और ये चुनाव गिरते जनदर के बारे में भी था। अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। ये एक राष्ट्रीय संकट है जिसे टाला नहीं जा सकता। ये थे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के शब्द। जर्मनी की कट्टरपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD के खिलाफ बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले महीने हुए आम चुनाव में AfD तीसरे नंबर पर रही। उसे पहली बार इतने वोट मिले कि वो मंगलवार को पहली बार संसद में बैठेगी। ये पार्टी मुसलमानों और शरणार्थियों का विरोध करती रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संसद को नस्लवाद के लिए मंच के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए।
Ja, wir sind hier, weil wir gegen die AfD sind und wir keinen Bock haben, dass die AfD irgendwie weiter ihre Macht ausbaut.
Um ein Zeichen zu setzen, dass ich es nicht selbstverständlich finde, dass 2017...
Hum yahan isliye aaye hain kyunki hum AfD ka virodh karte hain aur hum nahi chahte ki wo apni aur taakat badhayein. हम बताना चाहते हैं कि यह स्वाभाविक नहीं है कि 2017 में एक लोकतंत्र विरोधी पार्टी जर्मन संसद का हिस्सा बने। हम नस्लवाद के खिलाफ और विविधता के लिए एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं। ये थे प्रदर्शन में शामिल लोगों के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को गुडविल अम्बेसडर बनाने के कुछ ही दिन बाद पद से हटा दिया है। इससे पहले मुगाबे को गुडविल अम्बेसडर बनाने के लिए WHO प्रमुख की चौतरफा आलोचना हो रही थी। जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। पिछले सप्ताह एक कार बम धमाके में मारी गई माल्टा की पत्रकार डेफने कारुआना गलिट्स को न्याय दिलाने के लिए माल्टा में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार ने हत्यारे की पहचान बताने के लिए भारी इनाम रखा है। 53 साल की गलिट्स ने माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट और उनकी पत्नी पर पनामा पेपर से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। जापान में चक्रवाती तूफान टाइफून लैन से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसे बहुत ताकतवर और व्यापक विस्तार वाला तूफान बताया जा रहा है। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन एक दिन बाद भारत आने वाले हैं और भारत आने से पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया है। सऊदी अरब में रेक्स टिलरसन ने एक बयान दिया है जिसे खाड़ी देशों पर ईरान के असर को कम करने की अमरीका की एक और कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि ईरान के समर्थन वाले जो लड़ाके इराक में तथाकथित इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे हैं उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि लड़ाई अब लगभग खत्म हो रही है।
Certainly, Iranian militias that are in Iraq now that the fight against Daesh and ISIS.
अमरीकी विदेश मंत्री कह रहे थे कि ईरान के लड़ाकों को इराक से चले जाना चाहिए, इसके अलावा जो अन्य विदेशी लड़ाके इराक की जमीन पर मौजूद हैं उन्हें भी वापस चले जाना चाहिए ताकि इराक के लोग उन इलाकों पर दोबारा नियंत्रण कर सकें जिन्हें ISIS और दाइश से छुड़ा लिया गया है। विदेशी लड़ाकों की वापसी होगी तभी इराक के लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर आएगी। सऊदी अरब में ये बयान देने के बाद अमरीकी विदेश मंत्री कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा में रेक्स टिलरसन ने कहा कि इराक के भीतर इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए कुर्द लड़ाकों को एकजुट रहने की जरूरत है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के प्रति समर्थन जताते हुए अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा,
प्राइम मिनिस्टर अबादी इज इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज कंट्री, ही इज इन फुल कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट।
अमरीकी विदेश मंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी का अपने देश पर और सैन्य अभियानों पर पूरा नियंत्रण है, उन्हें अपनी संवैधानिक बाध्यताएं पता हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कुर्द लड़ाकों को इस तरह से समाहित किया जाएगा कि संविधान का पूरी तरह से पालन हो। अमरीकी विदेश मंत्री के इन बयानों पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि ईरान और इराकी शियाओं ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो इस्लामिक स्टेट बगदाद पर राज कर रहा होता। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान ईरान के असर को कम करने की कोशिश की है और इसके अलावा सऊदी अरब और कतर के संबंधों को भी सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन कतर और सऊदी अरब के बीच पिछले 5 महीने से जारी कड़वाहट में कोई कमी नहीं आई है। खुद अमरीकी विदेश मंत्री ने भी माना है कि ऐसा कोई प्रबल संकेत नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि सऊदी अरब और कतर बातचीत के लिए तैयार हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और आइए अब रुख करें भारत का। भारत से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है हम बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कब होंगे इसकी तारीख चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं बताई है, लेकिन चुनाव से पहले गुजरात में सियासी पारा हर दिन लगातार चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां नई नई परियोजनाओं का दनादन एक के बाद एक उद्घाटन और शिलान्यास करते जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी को उनके ही घर यानी गुजरात में घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज गांधीनगर में राहुल गांधी की एक रैली होने वाली है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आने वाले नेता अल्पेश ठाकुर भी मौजूद होंगे। अल्पेश ठाकुर के कांग्रेस में जाने से पार्टी को कितना फायदा होगा और क्या उत्तर भारत की तरह गुजरात में भी जाति की राजनीति चुनाव में गहरा असर दिखाएगी, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने गुजरात में सामाजिक कार्यकर्ता मितुल भाई रबारी से बात की।
जो ओबीसी समाज है ना वो गुजरात में 50% है, 50% से भी ऊपर जा रहा है। तो 1985 में एक ऐसा समीकरण बना था कि जब ये कम्युनिटी कांग्रेस के साथ थी तो 149 सीट लेके आई थी। भरत सिंह सोलंकी के पिताजी से महादेव सिंह सोलंकी, उन लोगों ने एक थियरी बनाई थी, खाम थियरी, और यहाँ के गुजरात के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जीणा दर्जी, उसकी ये थियरी थी कि ये 3-4 कम्युनिटी को साथ में लेंगे तो गुजरात चलता रहेगा। वही समीकरण अभी बन रहे लग रहे हैं।
कांग्रेस को अल्पेश के आने से कितना फायदा मिल सकता है?
17-18 सीट पे ये इफेक्ट करने वाले हैं और ये बीजेपी को सब जगह पे नुकसान करेंगे क्योंकि इनकी कम्युनिटी है ठाकुर कम्युनिटी, उनके ओबीसी समाज में 30% वोट इन लोगों के हैं।
अगर हम बात करें उत्तर भारत में जो राजनीति होती है जातियों की, तो क्या ये जाति वाली राजनीति क्या गुजरात में अब तक देखने को मिली है या ये पहली दफे एक सीन बनता दिख रहा है?
नहीं, अब अगले दो इलेक्शन में इतना जातिवादी ये नहीं उठा, क्योंकि ये लोगों ने विकास के नाम पे लोगों को भटका, लेकिन अभी ये जातिवादी इलेक्शन ये समय रहेगा, क्योंकि एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि पटेल कम्युनिटी खड़ी हुई है अनामत आंदोलन के पीछे। अभी तक क्या था कि ये मोदी और अमित शाह ने जोड़ी ने जो यहाँ के पटेल कम्युनिटी के जो नेता है उसको साइडलाइन किया। यहाँ पे 12% लोग हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और खेती के साथ सब जुड़े हुए हैं, उनको साइडलाइन किया। जो उनका मूवमेंट शुरू हुआ इसके साथ सब जातियों के मूवमेंट खड़े हो गए।
शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, ये भी क्या अपनी जातियों को प्रभावित करते रहे हैं?
केशुभाई ने तो अगले टर्म में खेल लिया ना, उनका जाति का प्रभाव। यहाँ पे गुजरात में तो एक ही चीज हुआ है कि आज तक कोई भी मोर्चा बना है तो वो जाति को प्रभावित नहीं कर सके हैं। सब जो आंदोलन वाले नेता है उनको या बीजेपी में जाना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, तीसरा विकल्प यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अभी इससे क्या फर्क पड़ेगा कि 12% पटेल का है, अगर हार्दिक पटेल 6% भी आराम से कांग्रेस के पाले में लाने में सफल रहा और अल्पेश ठाकुर की वजह से जो ओबीसी मतदार है वो 50% में से 30% भी आए, तो इन लोगों का ये है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के 15% वोट है उसमें से 10% वोट आज भी कांग्रेस को मिल रहे हैं, और दलित कम्युनिटी में भी ज्यादा लोग कांग्रेस को मानने वाले हैं, उससे कांग्रेस को सीधा फायदा तो होगा ही।
ये थे गुजरात में सामाजिक कार्यकर्ता मितुल भाई रबारी, जो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में असर डालने वाले जातीय समीकरणों के बारे में बता रहे थे। कार्यक्रम में आगे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी और साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी भी होगा आज, लेकिन पहले आइए विस्तार से जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। संदीप राय मेरे साथी, उनके हाथ में कई अखबार हैं, स्टूडियो में ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं।
जी संदीप, आज के लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा को पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग लगाई है कि पीएम ने किया आगाह, उन्होंने जिन्होंने विकास का विरोध किया उन्हें केंद्र से एक रुपया नहीं मिलेगा। अखबार लिखता है कि रविवार को प्रधानमंत्री ने राज्यों का नाम न लेते हुए आगाह किया कि जो विकास विरोधी हैं उन्हें केंद्र की उनकी सरकार से एक रुपया भी नहीं मिलेगा।
कहीं ये इशारा उन राज्य सरकारों की तरफ तो नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है?
जी ऐसा
हो सकता है।
मोदी ने गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा न किए जाने पर आलोचना करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है पीएम मोदी ने कहा सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाएगी और राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करेगी।
एक ये भी मैं पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये भी कहा कि जीएसटी आने के बाद 27 लाख नए सिटीजन्स मेन स्ट्रीम में आए हैं, मुख्य धारा में आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी आने के बाद उन दुकानदारों को कारोबारियों को डरने की ज़रूरत नहीं है और उनका जो पुराना कच्चा चिट्ठा है लेखा जोखा है उसकी किसी तरह की जाँच नहीं होगी। ये अलग बात है कि अभी एक शायद एक हसमुख अधिया वाली खबर भी आप अखबारों में देख रहे होंगे, कुछ उन्होंने चिंता जताई है जीएसटी को लेकर।
जी जी, उन्होंने वो अगली खबर है जिसमें राजस्व सेक्रेटरी अधिया हैं, उन्होंने हसमुख अधिया, उन्होंने कहा है कि लघु और मध्यम कारोबार से बोझ कम करने के लिए, करों का बोझ कम करने के लिए जीएसटी की दरों में फिर से बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि जीएसटी को लागू किए जाने के 4 महीने हो गए हैं और बीच में इसकी दरों में एक बार बदलाव किया भी जा चुका है
और अभी भी शिकायतें इस तरह की आती रही हैं, सुनने में आती रही हैं। दिवाली पर भी हमने देखा दुकानदार कच्ची रसीदें दे रहे हैं या ज़्यादा दाम ले रहे हैं या उनमें क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि कीमत कितनी है, 18% जीएसटी लगेगा या डबल लगेगा या 9% लगेगा। तो अभी भी कहीं कई कई हलकों में कई जगहों पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनका हवाला अधिया का हवाला देते हुए कहा है कि जीएसटी के तहत कर नियमों को पूरी तरह सुसंगत बनाने में 1 साल का वक्त लगेगा। ये अधिया साहब खुद ही कह रहे हैं
तब तक चुनाव का वक्त भी आ जाएगा।
जी, क्योंकि ये इसको बड़ी खबर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सरकार जीएसटी को लेकर पशुपेश में शुरू से ही दिखाई दे रही है
और विपक्ष भी घेरता रहा है सरकार को इस मुद्दे पर। खुद सरकार के सरकारी अधिकारियों से रिजर्व बैंक के हलकों से भी विरोध के स्वर दबे छुपे और कई बार मुखर होकर सामने आते रहे हैं।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर एक खबर लगाई है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त जजों के फैसले को के मूल्यांकन के लिए बनाई गई कमेटी को भंग करने के लिए कोलिजियम का जो फैसला है उसका केंद्र ने विरोध किया है। अतिरिक्त जजों की नियुक्ति पहली बार 2 साल के लिए होती है और 2010 के बाद से ऐसा नियम बना है जिसमें ऐसे जजों को नियुक्ति देने के पहले उनके दिए गए फैसलों की जांच की जाती है कमेटी।
यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच
जो टकराव है वो थम नहीं रहा है,
टकराव आगे ही बढ़ रहा है।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स की ही एक और खबर है जिसमें अंदर के पृष्ठ पर यह खबर है जिसमें कहा गया है कि झारखंड में 1 महीने के अंदर भूख से होने वाली दूसरी मौत दर्ज की गई है। अखबार के अनुसार धनबाद में 43 साल के रिक्शा चालक वैद्यनाथ रविदास की कथित तौर पर भूख से मौत हो गई। रविदास की पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि उनके पास 7 दिनों से कुछ खाने को नहीं था। ये पिछले दिनों आप देख चुके होंगे कि एक 11 साल की बच्ची भी भूख से उसकी मौत हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले 42 सालों में दिल्ली एनसीआर के 40% जलाशय लुप्त हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि शहरीकरण की वजह से पक्के मकानों के क्षेत्रफल में 17 गुना बढ़ोतरी हुई है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि शहरीकरण के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है।
ये दिल्ली के पुराने लोग जो हैं बहुत सालों से रह रहे हैं वो बताते हैं कि साहब यहाँ पर जो शनिवार रविवार को जो सड़कों पर ट्रैफिक दिखता है छुट्टी के दिनों, ऐसा ट्रैफिक सोमवार मंगलवार जो वर्किंग डेज होते हैं, ऑफिस जाने का वक्त होता है, ऑफिस से आने का वक्त होता है, उस पीक टाइम में उतना ट्रैफिक होता था 20-25 साल पहले जितना आजकल शनिवार रविवार को दिखाई देता है।
जी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से ही संबंधित एक खबर है, हालांकि ये लोगों के लिए है जिनका बैंक से साबका पड़ता है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि बैंक में 50,000 से अधिक जमा करने पर अब मूल आईडी दिखाना होगा। केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून में संशोधन से इसे अनिवार्य बना दिया है।
हालांकि पहले पैन कार्ड का नंबर तो देना ही होता था जब आप, यदि मेरी जानकारी सही है तो जब 50,000 से अधिक की राशि जमा करते थे तब भी पैन कार्ड लगता था।
जी जी, लेकिन अब उसकी सत्यता बैंक जांचेगा, उस ओरिजिनल आईडी को बैंक उसकी फोटोकॉपी से सत्यता जांचेगा, ये अनिवार्य किया गया है। एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि असम में बीजेपी के एक सांसद ने गांधी और नेहरू को कूड़ा कहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद कामाख्या प्रसाद ने कथित रूप से कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को बिना जाने कांग्रेस ने लोगों का दिमाग गांधी और नेहरू जैसे कचरे से भर दिया। इस पर बवाल मचा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति से संबंधित एक खबर प्रकाशित है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने अध्यापकीय पदों पर आरक्षण लागू करने के एक नए फार्मूले का प्रस्ताव दिया है और अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो SC ST और OBC के पदों में कमी आएगी, भारी कमी।
अच्छा, एक ये खबर मैं देख रहा हूँ, ये खबर बताइएगा क्या खबर है। ये चुप्पी यदि है तो यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, ये हाईकोर्ट की खबर लग रही है।
जी जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अपने फैसले में कहा है कि अगर बलात्कार पीड़िता चुप है सुनवाई के दौरान तो इसका मतलब ये नहीं है कि यौन संबंध की उसकी तरफ से सहमति है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला का बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मिली 10 साल की सजा के बारे में सुनवाई कर रही थी, तो ये खबर है। कुछ महत्वपूर्ण खबरें और हैं,
बहुत संक्षेप में बताइए।
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें कहा गया है, एक में कहा गया है कि अगर रेलवे में AC 1st और AC 2nd के वेटिंग अगर टिकट हैं और कन्फर्म नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि एयर इंडिया से उनको आगे ले जाने की का जो प्लान है उसको हरी झंडी दे दी जाए।
लेकिन कितने शहरों में विमान उतरते हैं ये भी तो देखिए।
जी,
तो समाचार पत्रों की सुर्खियां आपने बहुत विस्तार से बताई, बहुत शुक्रिया आपका। और श्रोताओं, BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। वक्त हुआ है दिल्ली में सुबह के 6:48:49 हो रहे हैं और हवा में हल्की हल्की ठंडक आप भी महसूस कर रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आप जानते हैं पिछले दिनों टीपू सुल्तान और एक केंद्रीय मंत्री का नाम और उनका बयान अखबारों की सुर्खियां बना था। इस बयान से भारत में कई लोगों को हैरानी हुई। हैरानी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची में हमारे सहयोगी वस्तुल्ला खान को भी हुई। क्या था वो बयान और क्या है हैरानी की वजह, आइए सुनते हैं वस्तुल्ला खान की जुबानी।
मैं यूनियन मंत्री हेगड़े से बिल्कुल सहमत हूं कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार को टीपू सुल्तान की जयंती मना के हिंदुओं के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अब टीपू के मंत्रियों को ही लीजिए, नाम हिंदुओं जैसे और काम गद्दारों वाले, सूबा राव वजीर दरबार, शमाया आयनगर गृह मंत्री, मूल चंद और दीवान राय दिल्ली के मुगल दरबार में मैसूर के नुमाइंदे, और सबसे बढ़ के टीपू का प्रधानमंत्री दीवान पूर्णिया, जिस पे टीपू को इतना अंधा विश्वास था कि अपनी रॉकेट फोर्स का चीफ भी बना दिया और अंग्रेज से लड़ते लड़ते मरने से पहले पूर्णिया के हाथ में अपने बेटे का हाथ देते हुए कहा, दीवान अब ये बच्चा तेरे हवाले। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि टीपू ने कोरक के हिंदुओं और मालाबारी नायरों को बड़ी तादाद में कत्ल किया, लेकिन बेंगलोर के ईसाइयों और महादेवी के मुसलमानों और मोपला मुसलमानों को क्यों कत्ल किया? शायद इन सब के बारे में उसे अंग्रेज़ों की जासूसी करने का शक था। अगर ये झूठ है तो मुझे उम्मीद है कि और नहीं तो कम अज़ कम कर्नाटक की बीजेपी अगले वर्ष से लॉर्ड कार्नवालिस की जयंती मनाना शुरू करेगी कि जिसने टीपू जैसे मूजी से भारतवासियों की जान छुड़ा दी। नए इतिहास के अनुसार टीपू ने मैसूर में 8,000 मंदिर गिरा दिए, मगर अपने ही महल के बाजू में खड़ा रंगानाथ स्वामी मंदिर ढाना भूल गया। अजीब कातिल था, हिंदुओं से इतनी नफरत, और किले में 10 रोज तक दशहरा भी मनाता था। ये परंपरा टीपू के बाद भी उसके खानदान में चलती रही। रिकॉर्ड के अनुसार 158 बड़े मंदिरों को टीपू सरकार सालाना ग्रांट देती रही और जमीनें भी अलॉट की। जब 1791 में पेशवा माधोराव की मराठा सेना ने टीपू से जंग के दौरान सरंगेरी का मठ उजाड़ दिया तो शंकराचार्य ने टीपू को 30 पत्र लिखे और टीपू ने सरंगेरी के मंदिर को बहाल करने के लिए पैसों और कारीगरों का इंतजाम करके दिया। ये तमाम पत्र 1916 में सामने आए और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी मैसूर ने महफूज कर लिए। कोलोर में पार्वती देवी के मोकम्बिका मंदिर की वेबसाइट पे आज भी लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मराठा सब सोना चांदी जवाहरात लूट के ले गए। यहाँ आज भी शाम 7:30 बजे टीपू के नाम की प्रार्थना आरंभ होती है। चले भूल जाएं कि 70 के दशक में कर्नाटक की आरएसएस ने भारतीय महावीरों को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए कन्नड़ा में भारता भारती पुस्तक सीरीज छापी, उसमें एक पुस्तक टीपू सुल्तान पे भी थी। चलिए ये भी भूल जाते हैं कि 2008 में कर्नाटक के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बीएस यादरप्पा ने जब 2012 में कर्नाटक जनता पक्ष के नाम से अपनी पार्टी बनाई तो मुसलमानों के एक जलसे में टीपू सुल्तान जैसी पगड़ी बांध के और हाथ में वैसी ही तलवार पकड़ के लाखों हिंदुओं के कातिल को महान वीर का सम्मान दिया। और जब 2014 में श्री यादरप्पा फिर से बीजेपी में लौटे तब से वो टीपू सुल्तान का नाम सुनने को भी तैयार नहीं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि टीपू कातिल और गद्दार नहीं था, कम अज कम आज तो मान लो कि ऐसा ही है, क्योंकि इतिहास और शेयर मार्केट का कुछ पता थोड़ी है कि कल कौन सा सौदा कितने में बेचा या खरीदा जाएगा।
टीपू सुल्तान के बहाने भूत भविष्य और वर्तमान को टटोल रहे थे वस्तुल्लाह खान, और आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में। साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी में आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरें विस्तार से बता रहे हैं।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
फर्स्ट टाइम ऑफ आस्किंग एंड श्रीकांत किदांबी विंस हिज थर्ड सुपर सीरीज टाइटल ऑफ द ईयर।
कल भारत के के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में कोरिया के ली ह्यून को 21-10 21-5 से मात दी। ये शायद के श्रीकांत की किसी भी फाइनल में सबसे आसान खिताबी जीत थी, क्योंकि उन्हें ह्यून को हराने में केवल 25 मिनट लगे। के श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले के श्रीकांत इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, इंडोनेशियन ओपन और सिंगापुर ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। और अब समीक्षा 10 साल बाद भारत के एशिया कप जीतने की।
लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फॉरवर्ड द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द एशिया कप बांग्लादेश 2017 इंडिया।
फाइनल किसी भी टीम के लिए जीतना देश को और हर नागरिक को एक खुशी देने वाला मौका हम सबको मिला है, लेकिन हमारी टीम ने जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक लय ताल, एक डिसिप्लिन टीम का एक नमूना पेश किया, वो सबसे बढ़कर मुझे खुशी दे रहा है।
साल 1975 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में अपने गोल से भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाले पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार के ये शब्द उस भारतीय हॉकी टीम की कामयाबी के बाद के हैं जब उसने कल ढाका में समाप्त हुआ एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल में भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराया। भारत के लिए रमनदीप सिंह ने तीसरे और ललित उपाध्याय ने 29वें मिनट में दूसरा गोल किया। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल 50वें मिनट में साभा शाहरी ने किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजय रही, हालांकि सुपर फोर में वो जरूर दक्षिण कोरिया से 1-1 की बराबरी पर रही। उसने पाकिस्तान को 2 बार मात दी, पहले तो पूल मैच में 3-1 से और उसके बाद सुपर फोर में 4-0 से। भारत की खिताबी जीत में हरमनप्रीत, ललित उपाध्याय, आकाशदीप और गुरजंत जमकर चमके, लेकिन युवा मनप्रीत सिंह की कप्तानी के कायल हो गए हैं हॉकी इंडिया के चयनकर्ता और पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह।
हर एक टूर्नामेंट कप्तान बदलते रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम को एकजुट करके खेले और अपना पूरा कंट्रोल रखे उसके ऊपर। अभी तक देखने में आया कि इसकी कप्तानी में टीम काफी अच्छा खेल रही है।
एशिया कप में जापान, बांग्लादेश और मलेशिया को हराकर भारत ने दिखा दिया कि उसकी तैयारी शानदार थी। तो क्या ये भी माना जाए कि नए कोच शॉर्ट मार्टिन भी पहली परीक्षा में पास हो गए हैं? अशोक कुमार कहते हैं,
तो कोच को जाना ही है और जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कि अब यूरोप के साथ यही टीम कैसा खेलेगी भविष्य के अभी गर्भ में है और वो मौके जब आएंगे उम्मीद यही करते हैं ये टीम इस तरह से ही खेलेगी।
साल 2003 और 2007 में एशिया कप जीतने के 10 साल बाद भारत ने अब जाकर तीसरी बार एशिया कप जीता है। अब उसकी असली ताकत का पता दिसंबर में होने वाले हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में चलेगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे,
कांग्रेचुलेशंस टू द चैंपियंस।
उधर न्यूजीलैंड ने कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य था जो उसने विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम के नाबाद 103 और अनुभवी रॉस टेलर के 95 रन की मदद से 49 ओवर में केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली की 121 रनों की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 280 रन बनाए। टीम सऊदी ने 73 रन देकर 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाकर विराट कोहली के 200वें एक दिवसीय मैच में शतक की उपलब्धि पर पानी फेर दिया। वहीं इन दिनों भारत में खेले जा रहे फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में स्पेन ने ईरान को 3-1 से और ब्राजील ने जर्मनी को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब 25 तारीख को पहले सेमीफाइनल में ब्राजील का सामना इंग्लैंड से और दूसरे सेमीफाइनल में माली का सामना स्पेन से होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अब जब इराक में युद्ध समाप्ति की ओर है तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे विदेशी लड़ाकों को वापस चले जाना चाहिए। जापान में हुए मध्यावधि चुनाव में प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारी जीत की ओर हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक अबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने की संभावना है। जर्मनी की कट्टर दक्षपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD के खिलाफ बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे संदीप राय और इस दौरान कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। नमस्कार भारत में आज इतना ही। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक bbchindi.com आपके साथ है।